अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर भवन प्रातःकालीन अमृत बेला का शुभ शांत वातावरण और ऐसे शांत वातावरण में बैठकर महापुरुषों और प्रभु की अनुकंपा से हम लोग नित्य निरंतर पूरे वर्ष शास्त्रों के माध्यम से महापुरुषों की वाणी भगवान की वाणी के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य का चिंतन करते हैं। वर्तमान में श्रीमद् भगवद गीता का षोडश अध्याय दैवी संपदा का हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से दैवी संपदा के गुणों के आ जाने पर स्वभावतः परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, फिर किसी यत्न प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। ये दैवी संपदा के गुणों की विशेषता है। इसलिए दैवी संपदा के गुणों को यदि धारण करने की शक्ति हो तो निरंतर जो है प्रयास करना चाहिए, और यही आध्यात्मिक साधना है। जो सिद्धियों की साधना है वो सांसारिक सिद्धियां वस्तु पदार्थ प्रदान करती है, और आध्यात्मिक साधना परमेश्वर प्रदान करती है। तो वर्तमान में हमने विचार किया, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीह चापलम। तो कल हम लोगों ने विचार किया अपैशुनम, पिशुनता रूपी जो हमारे अंदर एक गुण है, स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, दूसरे की निंदा करने में आनंद आना, दूसरे की निंदा के आनंद की बजाय अगर दूसरे की जिस कारण हम निंदा कर रहे हैं वही दुर्गुण अपने अंदर देखकर अपने प्रति हम विचार करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बढ़िया दवाई है। तो अपैशुनम भगवान ने बहुत सुंदर एक जो है दैवी संपदा का गुण हमको दिया है, कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है क्योंकि स्वभावतः अधोपतन की ओर जाना हमारे मनुष्य का क्या है, स्वभाव है, और इसी में ही हमको गिरने में कोई कष्ट नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, किसी प्रकार की उसमें जो है प्रयत्नशीलता की आवश्यकता नहीं। स्वभावतः नीचे गिरने का जो स्वभाव हमको बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए अपैशुनम जो है हमारे यहां दैवी संपदा का एक गुण माना गया है। और उसके बाद भूतेषु दया, संपूर्ण भूत प्राणियों में जिसको भगवान ने ज्ञानवान का लक्षण माना है, द्वादश अध्याय में आप लोग जो है पाठ करते हैं, सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। तो ये जो सर्वभूत हितेरता भगवान ने कहा, ये दो श्लोक भगवान ने विशेषकर द्वादश अध्याय में ज्ञानवान के लक्षण बताए हैं, है ना। बाकी तो अध्याय हम लोग जो है ऐसा मानते हैं कि भक्ति का है, लेकिन भगवान ने नहीं किए हैं। ये जो आखिरी में हम लोग बोलते हैं, क्या नाम उसका, पंद्रहवें अध्याय का पाठ करने के बाद बोलते हैं पुरुषोत्तम योग, या किसी भी अध्याय का ना कर्म योग, ये सब हमारे आपके बनाए हुए हैं। भगवान ने या वेद व्यास जी ने, क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का निर्माण करने वाले कौन है भाई, महाभारत का ही तो अंश है ये, तो श्रीमद भगवद गीता की निर्माणकर्ता तो कौन है, वेद व्यास जी हैं। कोई भगवान थोड़ी वहां पे युद्ध क्षेत्र में जो है खड़े होकर कहेंगे अर्जुन वाच भगवान वाच, ये तो जो है वेद व्यास जी ने ही तो लिखा है ना, हैं। तो भगवान की वाणी को श्लोकबद्ध करने वाले कौन है, वेद व्यास जी है ना। तो वेद व्यास जी ने जो है जो लिखा उसका उन्होंने वास्तविकता में इस प्रकार से अध्यायों का विभाग नहीं किया कि ये भक्ति योग है, ये कर्म योग है, या ये ज्ञान योग है। ये तो हमारा और आपका बनाया हुआ है कि हम लोग देखते हैं कि जिस चीज में जिसकी ज्यादा चर्चा है उसका वही नामकरण संस्कार कर दिया, लेकिन भगवान ने तो सीधे तौर पर जो जो भगवान को जहां पर अच्छा लगा उसी के अनुसार अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। तो भूतेषु दया, ये ज्ञानवान का भी लक्षण है और भक्ति वाले का, दोनों का ही लक्षण है, क्योंकि दोनों को परमेश्वर की ही प्राप्ति होनी है। तो भूतेषु दया दैवी संपदा का एक गुण है, है, जिसको भगवान ने कहा है संपूर्ण भूत सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के प्रति हमारा जो दया का भाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वही हमारा स्वभाव होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान जो है संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति दया दिखाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहां बहुत पुराना और बहुत ही प्रचलित उदाहरण आता है कि शिवरात्रि में लोग कांवड़ लेकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे। गंगा जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ के दरबार में प्रातःकाल 4 बजे से ही महाराज प्रारंभ हो जाती जनता, और सब ले जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे थे। माता भगवती पार्वती ने भगवान से कहा, देखिए प्रभु आपके कितने भक्त हैं। भोलेनाथ ने कहा, इनमें से एक भी मेरा भक्त नहीं है। कैसे? बोले आओ दिखाते हैं। भोले भगवान मायापति हैं महाराज, उन्होंने अपने रूप को बदला और एक बीमार गधे के रूप में तड़पते हुए महाराज रास्ते में लेट गए, और उस गधे के बगल से लोग निकलते जा रहे हैं, भोलेनाथ की जय, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ऐसा हाहाकार महाराज वहां मचा हुआ है। ऐसे लगता है कि साक्षात सब भोलेनाथ के ही भक्त हैं। सब गधे को किनारे कर करके गंगा जल ले जाकर कहां पर उड़ेल देते हैं, शिवलिंग के ऊपर। महाराज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, है ना, किसी ने भी उस गधे की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दो मित्र जा रहे थे, उन्होंने कहा 2 मिनट रुको अपने मित्र से। बोले मुझे कुछ काम है। बोले क्या काम है? बोले महाराज, उन्होंने अपना गंगा जल का जो है लोटा निकाला जो बैंगी में था ना, तो उसको जो है गधे को, अरे पागल हो क्या, इतनी दूर से गंगा जल लेके आए हो, इतने किलोमीटर तुम चल के पैदल, और इस गधे को पिला दोगे, अरे तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ना। बोले ना, मैं तो इसी गधे को पहले तृप्त करूंगा, उसके बाद अगर बच गया तो फिर आगे जाऊंगा। जैसे ही महाराज उसने गर्धव को जो है क्या पिलाया, गंगा जल पिलाया, तो वहां गर्धव गधा तो था नहीं महाराज, वहां तो वो साक्षात कौन थे, भगवान भोलेनाथ थे, भगवान शिव थे। तुरंत क्या हो गए, प्रकट हो गए वहीं पर। उसको महाराज उस शिवालय में भी नहीं जाना पड़ा, उसके लिए वहीं पर भोलेनाथ क्या हो गए, प्रकट हो गए। ये किसका परिणाम है? भूतेषु दया, प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर यदि दया भाव है तो भगवान हमारे लिए इतना सरल है, अन्यथा हर शिवरात्रि को महाराज भगवान के ऊपर क्या चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, दूध चढ़ाते रहो, है ना। जब किसी चीज की, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब आपके पास किसी चीज की अति हो तब आप उस चीज का दुरुपयोग करो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया दूध कहां जाएगा, है? आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, जमुना जी की शुद्धि के लिए, गंगा जी की शुद्धि के लिए उसमें दूध डालते हैं। अब नदी को आप दूध डाल के शुद्ध करोगे या अपवित्र करोगे? क्यों भाई, दूध डालने से जल शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, है? अरे भाई एक बात बताओ, आप अगर सुबह आपका दूध वाला या दूध लाके घर में रख लो और दोपहर तक गर्म करना भूल जाओ तो उस दूध में से क्या आती है, सुगंधी, क्या हो जाता है, सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता, खराब हो जाता है। तो वही स्थिति यहां पर है। तो हम देखते हैं महाराज कि बहुत से लोग, किसी को एक कप चाय नहीं पिला सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जाकर 1 लीटर दूध जो है 50-60 रुपए का क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। और वो कहां जाता है, अलावा नाली में जाने के कोई उसका उपयोग तो है नहीं मेरे ख्याल से। अरे भाई अगर नहीं भी, किसी गरीब को भी नहीं देना तो कम से कम पुजारी को ही दे दो, उसी के बिचारे के काम आ जाए कुछ, है? लेकिन लोगों का स्वभाव है, है ना, कि किस प्रकार से चीज का दुरुपयोग। तो भगवान कहते हैं आपका गंगा जल साक्षात के ऊपर पहले स्वीकार हो, क्योंकि हमारे अंदर चैतन्य के अंदर साक्षात बैठे हुए भगवान है। पत्थर की मूर्ति में तो जब प्रकट होंगे तब प्रकट होंगे, लेकिन महाराज पहले साक्षात का तो स्वागत करो। इसीलिए हमारे यहां जो पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसका फायदा हमारे 52 भगवान ने उठाया महाराज, है ना, क्योंकि राजा यज्ञ का संकल्प कर ही तब सकता था जब उसकी प्रजा तृप्त हो। अगर कोई भी प्रजा में अतृप्त रह गया तो यज्ञ का संकल्प ही नहीं कराया जाता था उसको, ये शर्त होती थी पहले, है ना। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ कर लें और हमारी प्रजा दुखी हो, कोई भूखा प्यासा हो हमारे यहां, है उसकी तृप्ति के बगैर यज्ञ भगवान, यानी क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, भगवान ही विष्णु, भगवान ही यज्ञ हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले प्रजा का तृप्त होना आवश्यक है, तब उसके बाद आप जो है उस यज्ञ में घी डालें, सोना डालो, चांदी डालो, मेवा डालो, भगवान कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है ना, बहुत से उदाहरण आते हैं, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का उदाहरण आता है कि एक छोटा सा जो नेवला था वो आधा क्या हो गया था, सोने का हो गया था, है ना। आधा सोने के लिए महाराज जो है, क्योंकि गरीब ब्राह्मण बहुत दिन से भूखा था, तो बहुत दिन से भूखा होने के बाद अपना सारा सत्तू बांट के जब खाने लगा और हाथ से जब छुड़ाया तो वो नेवला जो है वो खा रहा था सत्तू, और वो आधा क्या हो गया, सोने का हो गया महाराज। तो उसने सोचा कि अब तो महाराज क्या होगा, युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाकर बड़ी तृप्ति होगी, क्योंकि साधारण से ब्राह्मण के दरबार में जब ऐसा सोने का शरीर मेरा बन गया, एक साधारण से सत्तू के दान से जो है मैं स्वर्ण का हो गया, तो आधा तो मैं महाराज युधिष्ठिर के यहां तो इतना बड़ा राजसू यज्ञ हो रहा है, वहां पर तो जाके मैं तुरंत ही सोने का हो जाऊंगा, और जा करके महाराज जहां पर दुनिया भर का जो है ब्राह्मणों के हाथ धुलाए हुए जल का भंडार था उसमें जाकर लौटने लगा, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आया महाराज। तो उसने विचार किया कि ये कैसे संभव है, है ना। तो वहां पर पता चला कि अभी भी कुछ लोग इस राजसू यज्ञ के होने पर भी कुछ लोग क्या हैं, अतृप्त हैं महाराज। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तब तक ये राजसू यज्ञ पूरा होने वाला, इसी को भगवान ने यहां समझाने की चेष्टा की है। अध्यात्म कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप गायत्री मंत्र या जो है बड़े बड़े मंत्रों को याद कर लेंगे तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान इन साधारण चीजों से प्रकट होते हैं, क्योंकि ये भगवान के गुण हैं, और यही गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमको फिर भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी जहां पर अतृप्ति है वहां पर भगवान नहीं हो सकते, भगवान होंगे ही वहां पर जहां पर क्या है, अरे भाई यद्रच्छया लाभ संतुष्टो, ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या बताए भगवान ने गीता में, इनके इन प्रकारेण अपने आप को संतुष्ट रखने वाला योगी कहलाता है महाराज। समलोष्टाश्म कांचना, जो पत्थर में, सुवर्ण में, मट्टी में एक रस हो जाता, ऐसा तृप्त। क्योंकि भगवान तृप्ति में विश्वास रखते हैं, अतृप्ति में नहीं। तो दया तभी आप करेंगे जब आप स्वयं तृप्त होंगे, और जब स्वयं अतृप्त होंगे तो दूसरे के ऊपर दया करने का प्रश्न ही नहीं है। तो महाराज वो स्वर्ण का जब किस प्रकार से, जब महाराज युधिष्ठिर को बताया गया कि इस प्रकार से आपके राज्य में जो है कुछ लोग जो है क्या हैं, अतृप्त हैं, और यही फायदा महाराज बावन भगवान ने उठाया। यही तो कहा राजा बलि के दरबार में जाकर कि राजन तुम यज्ञ का संकल्प नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक तुम्हारे राज्य में ये बटुक ब्रह्मचारी जो है वो अतृप्त है। राजा बलि ने कहा सहर्ष बताओ तुम्हारी क्या तृप्ति है, और भगवान ने जो है उसके बदले में जो कुछ भी लीला थी उनकी वो किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम पूर्ण रूपेण, और उस दया का परिणाम ये हुआ कि राजा बलि को साक्षात भगवान मिले कि नहीं मिले, देखो, और कितना रोका महाराज शुक्राचार्य जी ने, है ना। राजा बलि कहते हैं महाराज भाड़ में जाइए, संपत्ति मेरे सामने याचक खड़ा है, और राजा बलि मना कर दे ये तो हो ही नहीं सकता। तो दया जो है भगवान ने दैवी संपदा का एक बहुत बड़ा गुण माना, और खाली एक के किसी के विशेष के प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति, और जो आपकी शरण में आ जाए, बड़ा कठिन काम है महाराज। उसमें अच्छा भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है ना। तो जितने भी हमारे महापुरुष या हमारे जो है परमेश्वर देखे गए, भगवान खुद गऊएं चराने जाते थे। अरे भाई नंद बाबा के इतने मुश्किल से महाराज संतान उत्पन्न हुई थी, वृद्धावस्था में नजदीक आ गए थे तब, तो ऐसे बालकों को क्या नंद बाबा, इतने धनी व्यक्ति जो ब्रज के राजा कहलाते थे, उनका बालक क्या धूप को सहन करके गाय चराने जाएगा, क्यों भाई? आप विचार कर सकते हैं कि धनवान व्यक्ति का बच्चा कोई जाता है इस प्रकार का कार्य करने? नौकर करते हैं महाराज, नंद बाबा चार नौकर रख देते, क्यों जाते? लेकिन स्वयं भगवान उस पांच वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे बच्चों बछड़े बच्चियों को लेकर स्वयं उस शीत घाम सब में जो है बर्दाश्त करते हुए, सहन करते हुए उन छोटे छोटे बच्चों को तृप्त कर रहे हैं। दया भूतेश्व लोलुप्तम, दया, बिना दया के आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है महाराज। ये जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिक वेदांत है। एक तो होता पढ़ने का वेदांत, उसको तो बड़ी आसानी से रट लो, अहम ब्रह्मास्मि, हो गए ब्रह्म। क्यों भाई? बड़ा साधारण सा वाक्य है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म कहने से आपको कोई जैसे पहले थे वैसे अभी हो, कि कोई फर्क पड़ गया? कुछ भी फर्क पड़ा है भाई? कुछ हुआ हो कि हाँ भाई मैं ब्रह्म की अनुभूति में डूब गया, हम ब्रह्मास्मि कहते? ऐसा तो कुछ वहां हुआ नहीं। वहां तो महाराज जैसे पहले थे वैसे ही हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो हम ये छोटे छोटे हैं जो साधारण से दिखने वाले ये गुण जो गिनाए गए हैं, दिखने में बड़े साधारण हैं, लेकिन महाराज बड़े बड़े धैर्यवान भी क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। धैर्यवान भी क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं महाराज। यहां पर आकर पूर्णतया असफलता उनको घेर लेती है, क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, अपने आप को संभालना पड़ता है, अन्यथा देहाभिमान हमारे अंदर जाग जाता है, हम अपने आप को विशेष मानने लगते हैं, अपने कार्यों को विशेष मानने लगते हैं और दूसरे साधारण जीवों की क्या कर देते हैं? अवहेलना कर देते हैं। और दूसरे की अवहेलना, अगर मान लीजिए कि आप तीन दिन से भूखे हैं और कोई व्यक्ति आपकी अवहेलना करके स्वयं भोजन करके महाराज आनंद ले रहा है, तो एक बात बिल्कुल सीधी भाषा में बताओ, आपको उसके ऊपर प्रसन्नता है होगी या गुस्सा आएगा? स्वभावता बताओ क्या होगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हैं, क्या आप उसको महात्मा कहेंगे? क्या उसको आप साधु पुरुष कहेंगे? क्या आप उसको जो है योगी कहेंगे? क्या आप उसको भगवान का भक्त कहेंगे? क्यों भाई? जो आपको पूछे नहीं और खुद खा पी के मस्त रहे। सीधी सी बात है, हमारा उसके प्रति भाव बनने वाला नहीं है। आप उसी को मानोगे जो आपको तृप्त करे। सबरी को राम ऐसे नहीं मिले महाराज, जब उसने बरसों बरस प्राणी मात्र की सेवा कर ली। अरे भाई, आपके सामने दो बर्तन हैं, एक जो है गंदगी से भरा हुआ है और एक प्लेट जो है बिल्कुल चमक रही है एकदम चमचम चमचम, किस में भोजन करोगे? क्यों भाई? कौन सी, चमकने वाली प्लेट में या जिसमें गंदगी लगी है? देखो, सीधा सा जवाब है महाराज, आपका अपना जवाब है। दया भूत है, भूतेषु दया, प्राणी मात्र के प्रति जो दया रूपी जो दैवी संपदा का गुण है, बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम 24 घंटे जो जीवन जीते हैं, इसमें बहुत सारी घड़ियां ऐसी आती हैं जहां पर हमको इस चीज का सामना करना पड़ता है और हम उस समय की या उस काल में स्थित उस कार्य की अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं और यही अवहेलना ही हमारे लिए अज्ञान का कारण बन जाती है ना। क्योंकि भगवान कोई विशेष पदार्थ नहीं है, भगवान कोई ऐसी विशेष मूर्ति नहीं है या उसका कोई स्थान नहीं है जो आपको वहां चमकता हुआ दिखाई देगा। भगवान तो महाराज प्राणी मात्र के प्रति, और शिरडी के साईं बाबा के लिए तो महाराज बहुत सी कहानियां आती हैं कि कहीं बिल्ली बनकर गए, कहीं कुत्ता बनकर गए और सब जगह से डंडा मार के उनको भगाया गया। क्यों भाई? भगाया गया कि नहीं भगाया गया? सब जगह से महाराज, जहां जहां पर भी जो है उनके मित्रों ने बुलाया, बोले मैं आया था। बोले कब आए थे? बोले मैं बिल्ली एक जो है माता बना के लाती थी उनके लिए भोजन, उसने खीर बनाई महाराज और बिल्ली आके खाने लगी और उसने डंडे से मार मार के उस बिल्ली को भगा दिया। जब पहुंची महाराज, हमने आपके लिए खीर बनाई थी, बिल्ली खा गई। बोले बिल्ली नहीं, मैं खुद आया था, तुमने मुझे बहुत मारा। बोले आपको मारा? जब पीठ खोल के दिखाई तो क्या पड़े हुए? डंडे के निशान पड़े हुए महाराज, है ना। दया भूतेशु, हमारे जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए बहुत सुंदर एक आता है, जो नाव से पार करके महाराज उनसे दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, तो एक अंग्रेज ऑफिसर स्वामी विवेकानंद जब वापस आए वाशिंगटन से तो उस समय उनकी प्रसिद्धि हो गई किसके शिष्य हैं, तो एक अंग्रेज जो है उनके दर्शन करने के लिए, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस को कोई जानता नहीं था, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, तो वहां मंदिर की छत पर उस जमाने में जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग और एक काली माता का मंदिर रानी ने बनवाया था 9 लाख रुपए में, किस समय की बात है 1800 कुछ, 9 लाख रुपए के बने हुए मंदिर थे और उसमें वो अकेले रहते थे और छत में खड़े होकर चिल्लाते थे कि आओ कुछ देर बैठ के सत्संग कर लो, एक भी आदमी उनके पास सत्संग करने के लिए नहीं आता था। लेकिन जिस समय स्वामी विवेकानंद वाशिंगटन में जो है सर्वधर्म सम्मेलन में आए, वापस नाम उनका हुआ, यश फैला, तो फिर उनके संग किसके शिष्य हैं, तो गुरु जी का नाम फैला, तो एक अंग्रेज दर्शन करने के लिए, और उस समय हम लोग गुलाम थे और भयंकर क्रोध होता था अंग्रेजों के अंदर, कलकत्ता तो उनकी राजधानी थी महाराज, तो रामकृष्ण परमहंस के गंगा पार करने के लिए, गंगा पार करके दर्शन करने के लिए आना पड़ता था, तो नाव वाले ने पैसा मांग दिया, हुजूर पैसा, बोले हमसे पैसा मांगता, और इतना गुस्सा हुआ कि उसने जम के जो है 2-4 तमाचे उसके लगा दिए महाराज, किसके, नाविक के, और उसके बाद जो है उस हिम्मत ही नहीं पड़ी बिचारे की पैसा मांगने की। आ गया इस पार, महाराज जी के दर्शन किए रामकृष्ण परमहंस के, बोले तुम मुझे मेरे दर्शन क्यों करने आए हो, तुमने तो मुझे इतना मारा है, अब क्या करोगे दर्शन करके, हैं मैंने आपको तो नहीं मारा, क्योंकि इतना अहंकार था महाराज की छोटी मोटी घटना को तो भूल जाते थे कि मैंने किसी को मारा है, मैंने तो आपको नहीं मारा। बोले देखो उनके गाल में जो है तमाचे के निशान बने हुए, बोले वो नाविक, वो नौका चलाने वाला मैं ही तो हूं, कोई दूसरा थोड़ी है, ये अद्वैत है महाराज। जहां पर प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन होता है, तुम एक नाविक को दुखी करके एक महात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हो। जब महाराज अंग्रेज को इस प्रकार से उन्होंने समझाया, तब उसकी जो है अकल का ताला खुला कि ये मैंने क्या गलती की। तो दया कोई साधारण चीज नहीं है, असाधारण साधना है ये, बहुत कठिन है, और अक्सर हम दूसरे की अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं, यही हमारे अज्ञान का कारण बना रहता है प्राणी मात्र में। इसीलिए बार बार हर जगह हर शास्त्र में भूतेश भूतेश विचित्र धीरा है, श्रुतियां क्या स्मृतियां क्या, सब बार बार यही चीज चिल्लाती, भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, दय देवान पुरुष, इसीलिए धीर शब्द लगाया गया, क्योंकि साधारण के बस का रोग नहीं है ये साधना। जब तक प्राणी मात्र में आपको दर्शन नहीं होंगे, तब तक वो परमेश्वर आपकी समझ में आने वाला नहीं है। स्वयं भगवान ने ऐसा किया, स्वयं महापुरुषों ने ऐसा किया, तब जाकर उनको ब्रह्म ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ब्रह्म ज्ञान तो महाराज संपूर्णता में बिछा पड़ा है। अब यहां पर हमारी परीक्षा होनी है, तो जब देखा जाता है जो महापुरुष ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर उनकी ना कोई भाषा समझता है ना वो किसी की भाषा समझते हैं, ऐसी जगह जाकर भी महाराज जो है वो रहे, और महापुरुषों ने वहां पर जो है पूर्ण आनंद की, एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ रहे, ना वो उनकी समझते हैं ना वो उनकी समझते हैं, समझ जाओ क्या स्थिति हो, तुम कुछ बोलो सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा और वो कुछ बोल रहा है वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी जगह पर क्या होगा, आनंद होगा क्यों भाई क्यों जी। एक बार हम लोग जो है केदारनाथ की घाटी में, मद महेश्वर का स्थान है बड़ा सुंदर, पंच केदार में आता हमारा है ना, सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, उन्होंने खोजा था वो मद महेश्वर का मंदिर, वो केदारनाथ से भी पुराना मंदिर है, घाटियों के बीच में बना हुआ 36 किलोमीटर इंटीरियर में है महाराज घाटियों में। तो वहां पर जो है हम लोग गए, तो मद महेश्वर के रास्ते में जो है बड़ा कठिन रास्ता है महाराज, जहां पर जाना उस समय, अब तो खैर काफी ज्यादा सरल कर दिया गया, तो मद महेश्वर का जो बड़ा प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है महाराज, पता नहीं चाइना के तरफ से या भारत की तरफ से कहां से लोगों ने उसको बनाया होगा, क्योंकि उसके बनाने की स्थिति जो है ऐसी है नहीं, तो पंच केदार में ये मंदिर आता है। तो जिस समय यात्रा में हम गए तो वहां पर एक गांव, लास्ट आखिरी गांव जो पड़ता मंदिर से पहले, क्योंकि खाने पीने का सामान ज्यादा था नहीं, तो चाय के लिए जो है व्यवस्था की बात आई, तो गांव में हम लोग गए। अब वो इंटीरियर का गांव हमारा, न वो हमारी भाषा समझे ना हम उनकी भाषा समझे। अब उनसे हम कहें चाय, उनको कुछ समझ ही में ना आए क्या बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा में चाय बोले, बड़ी समस्या महाराज है ना। तो इतना कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल से महाराज हिसाब किताब बैठा कुछ चाय वाय पीने का, तो आगे किस प्रकार से। लेकिन महापुरुषों को देखा जाता, ऐसी जगह में जाकर रहने पर भी उनको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और उन लोगों से जाकर जब पूछा, उनकी भाषा के लोगों ने, कि जिनकी तुम भाषा नहीं समझते हो, जिनकी बारे में तुम जानते नहीं हो, इनके संग रहकर तुमको कैसा लगा, बोले मन करता है कि ये हमेशा यहीं बने रहे। ये दया भूतेषु की अवस्था है कि संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, फिर वहां पर ये बोली भाषा प्रकृति सब की सीमाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, अरे हम ब्रह्म की व्याख्या जब करते हैं तो ब्रह्म कैसा है, अरे अनंत है कि नहीं है, सत्यम ज्ञान ब्रह्म, तो अनंत है। तो उस अनंत के लिए आपको भी क्या होना पड़ेगा, अनंत बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे दया का भाव जागृत होगा। दूसरों के प्रति दया के भाव में जब आप चरम पे पहुंच जाएंगे, तब आपकी स्थिति ये होगी कि आप कई कई दिन भूखे रहकर दूसरों को तृप्त करने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये साधना जो है, दया वाली साधना जब आपकी चरम पे पहुंचेगी, उस समय स्थिति ये आ जाएगी, कई दिन भूखे रहकर भी आप दूसरों को तृप्त करने की क्या करेंगे। अब बड़ा साधारण सा शब्द है, दया करो, बड़े आराम से सुन लो, पढ़ा लो, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला, हाँ, लेकिन जब आप व्यवहार में जाएंगे तो वहां पर स्थिति ये देखी जाती है कि महापुरुष कई कई दिन भूखे रहकर दूसरों को तृप्त करके, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथाएं आती हैं महाराज, हमारे यहां जो है कौन से राजा थे, यदुवंश के ही कोई राजा थे, उनका देखो नाम ही विसर गया, 49 दिन, कितने दिन, 49 दिन के बाद जो है भोजन मिला, और वो भी सब किसको खिला दिया, जितने भी प्राणी आए, सबसे पहले कुत्ता आया, चांडाल आया, जितने भी अतिथि आ गए सब खिला दिया, अंत में खाली जल पीने के लिए बचा वो भी महाराज पिला दिया, सब बांट दिया। कोई पात्रता उन्होंने नहीं देखी, कौन है, कुत्ता है, चांडाल है, कौन है, सब खिला दिया महाराज। और उस कितने दिन के भूखे थे, 49 दिन, 49 डेज, जरा कल्पना करो, तुम अगर 3 दिन के भूखे हो और तुम्हारे सामने भोजन आ जाए तो दूसरे को दोगे या खुद खाओगे, हैं, विचार करने वाली बात है, यह साधारण साधना नहीं है। सब दे दिया महाराज, और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो है, राजा विचार करने, राजा थे महाराज, सब कुछ इस प्रकार से बट गया दूसरे को तृप्त करने में, उस समय उन्होंने विचार किया, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि संसार की सारी पीड़ा मैं सहन कर सकूं, ये भगवान से मांगा उन्होंने कि मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि मैं संसार के संपूर्ण दुखी प्राणियों की पीड़ा को क्या कर सकूं। हाँ, और उस समय जो है जब ऐसा उन्होंने वाक्य बोला तो महाराज जो है भगवान वहां पर प्रकट हो गए, और एक दो नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, बोले बताओ क्या चाहिए। अगर वो हम आप होते तो कहते महाराज आपको तो मालूम है हम 49 दिन से क्या हैं, भूखे, इसलिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, भोजन। ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे मांगो, क्या मांगते हो, तो राजा बोले कि महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, ये है ब्रह्म ज्ञान, चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो सीधा आदमी गोली की तरह बोलता प्रभु आप सामने खड़े हो और हम 49 दिन से भूखे हैं, सबसे पहले तो हमको भोजन चाहिए, बाकी चीजें तो हम बाद में देखेंगे। तो महाराज बड़ा कठिन साधना है, लेकिन अगर आपको वास्तविकता में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम चाहिए यदि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, यदि वास्तविकता में आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो दया रूपी बहुत बड़ी साधना को अपने जीवन में आपको स्थान देना पड़ेगा। और इसी का ही दूसरा रूप है, अगला जो गुण है दैवी संपदा का, अलोलुप्तम, लोलुप्ता। लोलुप्ता कहते हैं इंद्रिय और विषय दो चीजें हैं। लोलुप्ता कब जागृत होती है? जब हमारी इंद्रियां, जिस इंद्रिय की जो भूख है उसी के भोगने का जो पदार्थ जब विषय सामने होता है, तब उस समय हमारी कोई भी इंद्रिय हमारे बस में नहीं होती। जिस चीज के आप खाने के शौकीन हैं, क्योंकि सबसे कठिन मानी गई है रसना इंद्रिय जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे जितना आदमी बीमार हो जाए, चाहे जितना उसके ऊपर बीमारियों की आपदाएं आ जाएं, लेकिन कभी ना कभी वो उल्टा सीधा खाने की गलती कर ही बैठता है महाराज की हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। क्योंकि रसना इंद्रिय जो है अपने पूर्ण वेग से उसको क्या कर रही है, घसीट के ले जा रही महाराज, और उसके बाद उसको उसका क्या भुगतना पड़ता, बड़ा भारी टैक्स दे के महाराज भुगतान करना पड़ता है। लेकिन रसना इंद्री जब पहले जो है वेग में आती है, तो महाराज वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो दैवी संपदा का एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है, विषय और इंद्रियों का जब संयोग हो तो हमारे अंदर एक भयंकर वेग जागृत होता है। जैसे लोहा और चुंबक, सीधा सा उदाहरण है, जिस प्रकार से लोहे को जो है चुंबक के संपर्क में लाया जाए हैं, तो वो लोहा अपने आप को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार से विषयों को देखकर हमारी इंद्रियां बिल्कुल भी रुकती नहीं हैं, और वहीं पर आपके धैर्य की क्या होती है, परीक्षा होती है। और इसका धीरे धीरे सनय सनय हमको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। क्या याद दिलाना पड़ेगा कि तुम इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, है ना, क्योंकि ये कार्य वही करेगा जो इंद्रियों का क्या है, गुलाम है। तो देखा जाता है महापुरुषों के अंदर जो विशेषता देखी जाती है यही है, जिसको कहते हैं लोलुप्ता का अभाव। चाहे जितने विषय हों, और भगवान ने दूसरे अध्याय में तो महाराज इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में महापुरुष का विवेचन कर दिया है भगवान ने, दूसरे अध्याय का एक बहुत सुंदर श्लोक है। क्यों भाई, याद है आप लोगों को? अब यही तो मैं पूछ रहा हूं वही तो आपको बताना कौन सा श्लोक है। क्यों भाई, देखो इतनी बार जो है आप लोगों ने स्थित प्रज्ञ दर्शन मेरे ख्याल से सुना होगा हैं, लेकिन ये जो लोलुप्ता का अभाव जो देखा जाता है महापुरुषों के जीवन में, आत्मज्ञानी कहते किसको हैं, और इसका वर्णन भगवान ने कब किया, दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में आत्मज्ञानी के लोलुप्ता रहित जीवन का की व्याख्या की भगवान ने, जरा सुनो। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्यों भाई, याद आया कुछ? ये लोलुपता रहित जीवन का परिचय है महाराज, आत्मज्ञानी का परिचय दिया गया है। क्योंकि हम कहां पर रह रहे हैं? अरे भाई, विषयों से भरे हुए संसार में रह रहे हो कि नहीं रह रहे? एक भी चीज ऐसी है जो विषय नहीं है यहां पर? जितनी भी चीजें हैं सब क्या हैं? अरे भाई, जिस कुर्सी में आप बैठे हो ये भी क्या है, विषय है कि नहीं है? अरे भाई, एक कुर्सी ऐसी यहां पर रख दी जाए जिसकी पूरी गद्दी के चिथड़े उड़े हों, बिल्कुल फटी हो गद्दी एकदम, कोई बैठेगा उसमें? क्या ढूंढोगे? जो सबसे बढ़िया गद्दी हो जिसमें, उसी में हर व्यक्ति उसी में बैठने की चेष्टा करेगा कि नहीं चेष्टा करेगा? तो ये कुर्सी भी क्या है, एक विषय है। हम पूरे विश्व में विषयों के अंदर ही निवास कर रहे हैं महाराज। जितना भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? सब विषय है। कहते हैं जिस प्रकार से यद्वत् आपः आपूर्यमाणम्, सब ओर से परिपूर्ण जो जलाशय है जैसे समुद्र है, जिस प्रकार से उसमें प्रविशन्ति प्रवेश कर जाती हैं, कैसी हजारों नदियां समुद्र में महाराज क्या करती हैं, प्रविष्ट कर जाती हैं, लेकिन वो समुद्र कैसा रहता है? अचल अप्रतिष्ठम, चलायमान नहीं होता। इतने पानी के वेग से भी वो समुद्र को चलायमान नहीं कर पाती हैं। समुद्र को विचलित करिए किए बगैर ही संपूर्ण नदियां प्रविष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से जिसके अंदर लोलुपता नहीं है, यानी इंद्रियों और विषय के संयोग का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही महाराज उस समुद्र की तरह कहते हैं, वो जो स्थित प्रज्ञ है या अलोलुपता को प्राप्त है, विषय और इंद्रियों के संयोग से, जैसे समुद्र और नदियों के संयोग से समुद्र को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से परम तृप्त जो आत्मज्ञानी है, ये विषय उसका कुछ भी बिगाड़, इन विषयों के मध्य में रहकर इनका आनंद लेते हुए, क्या करते हुए? क्यों भाई? अरे भाई, कंस के राज्य में लोग अपने घर का मक्खन नहीं खा पाते थे, और भगवान तो महाराज अपने घर का भी मक्खन लुटाते थे और दूसरे के घर का लूट भी लेते थे। विषयों के मध्य में रहकर विषयों का आनंद लेता है, क्या लेता है? आनंद लेता है, और उसका विषयों से कोई संपर्क भी नहीं होता। जैसे वो समुद्र नदियों के वेग से प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो भोगों को चाहने वाला है, उल्टा जो विषय देखे नहीं कि इंद्रियों ने उसकी लालसा कर डाली, बस अगली बार आंख ने दिखा दिया कि देख लो ये चीज गौर से, और उस आंख ने निर्णय कर दिया। जैसे दो मित्रों का एक बड़ा सुंदर जो है कथानक आता, दो मित्र जो है आपस में मिले, बोले भाई कहां से आ रहे हो? बोले मेरी घरवाली की आंख में पत्थर का टुकड़ा चला गया, उसको निकलवा के आ रहा हूं, देखो कितनी महंगाई हो गई। महाराज पूरे 2000 रुपए लग गए, एक कंकड़ पत्थर चला गया आंख में, तो कितने रुपए खर्च हो गए? बोले 2000 रुपए खर्च हो गए। बोले तुम बड़े सस्ते में छूट गए, हम तो जो है 2 लाख रुपए खर्च करके आए। क्यों? बोले हमारी यहां घरवाली की आंख में गाड़ी चली गई। क्यों भाई, समझ में आएगी नहीं बात? यही तो गृहस्थ जीवन है ना? घरवाली की आंख में क्या चली गई? ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए तो चाहिए महाराज, उसके लिए 2 लाख रुपए की क्या करनी पड़ी? व्यवस्था करनी पड़ी। तो तुम तो बड़े सस्ते में निपट गए महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष विषयों के मध्य में रहते हुए जिसके इंद्रिय विषय संयोग से कोई बिजली नहीं कौंधती है, बड़े शांत स्वभाव से इन विषयों का वो क्या लेता? राजा जनक, विदेहराज जनक का उत्तर आता है, क्यों आनंद लेता है? क्योंकि सुखदेव जी की बात समझ लीजिए, जैसे सुखदेव जी के ऊपर क्या लटक रही थी? तलवार। इसी प्रकार से आप भी अपने ऊपर एक तलवार लटका लो, काहे की? मृत्यु की तलवार। उस मृत्यु रूपी तलवार को अगर आप देखते रहोगे तो कभी भी इन विषयों के प्रति आप आसक्त, और जिस दिन वो तलवार आप हटा दोगे उसी दिन से विषयों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी, और विषयासक्त मनुष्य कभी परमेश्वर को प्राप्त, या तो विषय प्राप्त कर लो या भगवान प्राप्त कर लो, सा शांति मापनोति न काम कामी, कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। जो विषय और इंद्रियों के संयोग से व्याकुल हो जाता है उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती, और जो परम तृप्त अवस्था में रहकर विषय भोगों के मध्य में सुखदेव जी की तरह, जैसे सुखदेव जी बैठे हुए महाराज, जाकर मखमल के गद्दों में बैठा दिया, धूप से उठा करके सीधे मखमल के गद्दे में बैठा दिया और सैकड़ों स्त्रियां उनकी सेवा में लग गईं। सुखदेव जी ठूंठ की तरह बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको स्त्रियां नहला रही हैं और उसके बाद उनके जो है बाल संवार रही है, कोई उनका श्रृंगार कर रही है, सुखदेव जी ठूंठ की तरह बैठे हैं। विषेन्द्रीय संयोगात कुछ भी उनमें नहीं हो रहा महाराज, ठूंठ की तरह जैसे धूप में खड़े थे वैसे मखमल के गद्दे में बैठे हुए हैं, स्त्रियां उनको अपने हाथ से भोजन करा रही हैं, वो खा रहे हैं आराम से बैठे। सुखदेव जी की अवस्था ये इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न हुआ, वहां पर किसी प्रकार का आवेग नहीं है। स्त्री के हाथ से भोजन कर रहे हैं, सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वहां उनका कोई भाव ही नहीं है, है ना। तो ये महापुरुषों की अवस्थाएं देखी जाती हैं कि भोगों के विषयों के सागर में रहकर भी उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परम तृप्त अवस्था कहलाती है। और वही परम तृप्त अवस्था को लोलुपता का जो विषम रूप है, अलोलुप्तम कहा भगवान ने, सर्वथा लोलुपता का परित्याग। क्योंकि साधारण व्यक्ति को आपने देखा होगा कितनी घटनाएं होती हैं, नासिक में एक बार कुंभ में जो है किसी महात्मा ने क्या लुटा दिए थे, चांदी के सिक्के, चांदी के भी नहीं थे, नकली चांदी के सिक्के थे और उसको लूटने के लिए मेरे ख्याल से काफी लोग मरे थे उसमें है? कहीं पर कुछ भी बांटने लगो, साधारण सा सामान भी बांटने लगो तो महाराज ऐसा भयंकर जो है भगदड़ मस्ती है कि बहुत से लोग अपनी जान से ही उस साधारण से 25-50 रुपए के सामान के लिए अपनी जान ही क्या कर देते हैं, इतनी सस्ती बना देते हैं महाराज अपनी। ये सब लोलुपता का परिणाम है। जब मनुष्य पागलों की तरह विषयों के पीछे क्या करने लगता है, भागने लगता है, तो भगवान कहते हैं आत्मज्ञान का पथिक, अध्यात्म का पथिक इसका क्या कर देता है, परित्याग कर देता है। उसके उपरांत एक बहुत सुंदर दूसरा गुण जो आर्जव शब्द हम लोगों ने श्रवण किया था, आर्जवम, आर्जव यानी सरलता जिसको कहते हैं, और उसके बाद है मार्दवम, मार्दव यानी कोमलता, सरलता और कोमलता। जिस प्रकार से कछुआ होता है ना, भगवान का ये स्वरूप है, भगवान ऊपर से कठोर हैं और अंदर से दोनों स्वभाव हैं। भगवान से जैसे कच्छप की पीठ के सामने समान कठोर नहीं, इतना बड़ा ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है महाराज, लेकिन फिर भी उसकी पीठ जो है टूटती किस मटेरियल से भगवान ने उसको बनाया है महाराज, देखो जरा सोचो। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए किसका, अध्यात्म के पथिक का, संसार के विषयों के प्रति इतने कठोर हो जाओ और दूसरे के प्रति बिल्कुल क्या हो जाओ, कोमल हो जाओ, जैसे गुलाब के फूल होते हैं, है ना। भगवान के चरणों का स्पर्श भक्तों के द्वारा कैसा देखा गया, जो है भगवान के चरणों का जब स्पर्श किया तो बोले परम कोमलता, जैसे ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखड़ियों को छू रहे हों, ऐसा हमारा मन होना चाहिए कोमल। किसके लिए, अपने लिए नहीं, किसके लिए, हाँ अपने लिए तो कठोर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ स्वामी राम तीर्थ जो थे अपने सामने जो चीज उनका खाने का मन करता था तो उसको सामने रख लेते थे और फिर अपने मन से कहते थे अब खा इसको। बड़ी देर तक महाराज अपने मन को डांट लगाते थे, बोले तृप्ति हो गई, और फिर उस चीज को उठाकर, हाँ ये तरीका है महाराज, अपने प्रति तो कठोर होना चाहिए, है ना। क्योंकि जितना अग्नि में तो जितना घी डालोगे उतनी ही अग्नि क्या होगी, हाँ है ना। लेकिन जब आपको इससे पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा महाराज, कछुए की पीठ की तरह अपने लिए कठोर हो जाओ और दूसरे के लिए कोमल हो जाओ, है ना। जिस चीज का तुम्हारा सबसे ज्यादा खाने का मन करे उसको लाओ और ला करके दूसरे को खिला दो। बड़ा कठिन काम है लेकिन जिस दिन करोगे उस दिन महाराज आपको पता चलेगा ये क्या जोरदार साधना, ये सब साधनाएं हैं, आध्यात्मिक साधनाएं हैं महाराज, है ना। क्योंकि साधारण साधना तो बड़ी आसान है, माला लेके बैठ जाओ, लेकिन अपनी पसंद की वस्तु, अपने मन पसंद चीज तुम्हारे सामने रखी हो और खुद ना ग्रहण करके किसको दे दो, बहुत कठिन काम है। अपने मन को मारना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों के वेग को रोकना पड़ेगा। ये कोमलता का स्वभाव जब हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो भगवान कहते हैं मार्दवम, ये तुम्हारे लिए एक बहुत विशेष गुण बन जाएगा। उसके बाद आता है ह्री, यानी सरल और सरलता और कोमलता, ये हमारे जीवन के दोनों बिल्कुल संगी साथी होने चाहिए। इतने कोमल और इतने सरल हो जाओ कि सामने वाले के लिए आप बिल्कुल भारहीन अनुभव हो। कैसा लगे आपको, दूसरे को आप कैसे लगने लगो, बिल्कुल भारहीन, उसको आपका भार अनुभव ना हो, क्योंकि भार अनुभव हुआ और आपकी साधना जो है नष्ट हुई। यही साधना है कि दूसरा वाला हमको बिल्कुल सरलता से, जैसे आप हाथ में जो है जल उठा लेते हैं, आपको किसी भार का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको भार रूप ग्रहण ना करे, है ना। दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि दूसरा आपको देखकर प्रसन्न हो जाता है, एक ये रूप होता है कि दूसरा हमको देखना ही नहीं चाहता। कौन सा बनना चाहोगे, क्यों भाई, क्या बनना चाहोगे, लोग हमसे घृणा करें या लोग हमसे प्रेम करें? ये तभी संभव है जब आपका स्वभाव कोमल होगा, जब आपका जीवन सरल होगा। जितने सरल उतने ही, अरे भाई एक साधारण महात्मा को बुलाना कितना आसान है, क्यों जी, है कि नहीं। अब यहीं अगर किसी विशेष को बुलाना पड़े, फिर दुनिया भर की तैयारी करो, दुनिया भर का नाटक करो, दुनिया भर का खर्चा करो, तब जाकर जो है उनके आने की क्या होगी, हाँ व्यवस्था होगी। तो और कितनी देर के लिए, मिनटों के लिए हैं, और मिनटों में सारा खेल क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो महाराज इतना सरल जीवन होना चाहिए, और उससे भी सरल महाराज परमेश्वर है, हमारे बीच में रहकर चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। इतना कोमल स्वभाव हमको बनाना है। तो ही अचापलम, थोड़े से गुण बचे हैं और हमारे पास भी दिन भी थोड़े ही बचे हैं, तो जो है लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। दैवी संपदा के गुण को बहुत संक्षेप में जो है लेते हुए इसकी समाप्ति भी जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।